वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं कमर अब्बास। तो आइए पहले सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 102, 103 और 104 की तिलावत सुने।
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
تو کاش ہمارے لیے ایک بار پھر سنسار میں واپسی ہوتی تو ہم بھی مومنوں میں سے ہو جاتے، निश्चय ही इसमें एक बड़ी निशानी है, किंतु उनमें से अधिकतर इस पर भी ईमान लाने वाले नहीं थे, और निसंदेह तुम्हारा पालनहार ही है जो बड़ा प्रभुत्वशाली व अत्यंत दयावान है।
इससे पहले नरकवासियों की बातों की ओर संकेत किया गया, जिन्हें अपराधियों और पापियों के अनुसरण पर पछतावा हो रहा था और वे उन्हें दोषी ठहरा रहे थे। इन आयतों में ईश्वर उनकी इस इच्छा को बयान करता है कि वे संसार में वापस आना चाहते हैं, और कहते हैं कि काश इस बात की संभावना होती कि हम एक बार फिर संसार में लौट जाते और ईमान वालों की पंक्ति में शामिल हो जाते। अब हमारी समझ में आया कि संसार में हमारा मार्ग गलत था और हमने अपने आप को तबाही में डाल लिया है, किंतु खेद की बात है कि अब इसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि संसार में वापसी का कोई मार्ग नहीं है।
ईश्वर उनकी इस बात के जवाब में कहता है कि संसार में उनके मार्गदर्शन के लिए बहुत सारी निशानियां थीं, किंतु वे सच्चाई को समझना और उसे स्वीकार करना ही नहीं चाहते थे। यद्यपि ईश्वर ने उन्हें एक लंबी आयु प्रदान की और असत के मार्ग से हटकर सत्य के मार्ग पर आ जाने का अवसर दिया, किंतु उन्होंने इस अवसर से गलत लाभ उठाया और अपने गलत मार्ग पर ही चलते रहे। तो आज वे जो कुछ कह रहे हैं वो ज़बानी बात से बढ़कर कुछ नहीं है, और अगर वे संसार में लौट आएं तो ये ज्ञात नहीं कि वे ईमान वालों में शामिल भी होंगे या नहीं।
इन आयतों से हमने सीखा कि प्रलय का दिन पछतावे का दिन है, किंतु इस पछतावे का कोई लाभ नहीं होगा और क्षतिपूर्ति की संभावना नहीं है।
यदि लोग हट धर्म से काम लें और सत्य को स्वीकार न करना चाहें तो बड़ी ईश्वरीय निशानियां भी उनके मार्गदर्शन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती।
ईश्वर कृपाशील और दयावान होने के साथ ही शक्तिमान भी है, और जो लोग द्वेष और हर धर्म के साथ सत्य के मुकाबले में खड़े होते हैं उनके साथ कड़ाई से निपटेगा।
आइए अब सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 105, 106 और 107 की तिलावत सुने।
كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين
نوح کی جاتی نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ایشور سے نہیں ڈرتے نسندے میں تمہارے لیے ایک امانتدار پیغمبر ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیونی کے کچھ پہلوؤں کے الیکھ کے بعد ان آیتوں میں ایک انیہ ایشوریہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا الیکھ کیا گیا ہے۔ البتہ ایتہاسک درشت سے وہ حضرت ابراہیم سے پہلے تھے، اور قرآن مجید حضرت ابراہیم کو ان کے دھرم کا انویائی بتاتا ہے، کنتو چونکہ قرآن ایتہاس کی کتاب نہیں ہے और ये अतीत के लोगों की घटनाओं को इतिहास की दृष्टि से नहीं देखता, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से आगे और पीछे आने वाले पैगंबरों को उसी क्रम से बयान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 43 बार आया है, और ईश्वर ने उन पर विशेष सलाम भेजा है। उनकी जाति के लोगों ने उन्हें झुठलाया, किंतु कुरान कहता है कि उन लोगों ने समस्त पैगंबरों को झुठला दिया, क्योंकि सभी पैगंबरों का लक्ष्य एक ही है और उनमें से किसी एक को भी झुठलाने का अर्थ सभी को झुठलाना है। हर पैगंबर अपने काल में सच्चा व अमानतदार समझा जाता था और लोग उसे इन विशेषताओं से पहचानते थे, किंतु द्वेष व हर धर्म की भावना इस बात का कारण बनती थी कि जब वो पैगंबर सच्ची बात बताता था तो लोग उसे स्वीकार नहीं करते थे और केवल अपने भौतिक आनंदों एवं निजी हितों की रक्षा के विचार में रहते थे।
ईश्वरीय पैगंबर प्रश्न की शैली में और दोस्ताना एवं स्नेहपूर्ण स्वर में लोगों से बात करते थे। वे कहते थे कि तुम लोग अपने रचयिता से शर्म क्यों नहीं करते और क्यों बुरे कर्म करते हो, किंतु वे उनकी बातें और नसीहतें सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते थे और लोगों के लिए दिल में हमदर्दी रखने वाले पैगंबरों से दूरी बना लेते थे।
इन आयतों से हमने सीखा कि सभी ईश्वरीय पैगंबरों का एक ही लक्ष्य था और उनमें से किसी एक को भी झुठलाना वस्तुतः सभी को झुठलाने के समान है।
अपने समय के लोगों के साथ पैगंबरों का व्यवहार आदेशात्मक नहीं होता था, बल्कि वे स्वयं को उनका भाई बताते थे।
लोगों की सोई हुई अंतरात्मा को जगाने के लिए प्रश्न की शैली अपनानी चाहिए, आदेशात्मक नहीं बल्कि प्रश्नात्मक पद्धति प्रयोग की जानी चाहिए।
सभी पैगंबर अपने समय के लोगों के बीच बहुत नेकनाम थे, इसके बावजूद बहुत से लोग उन पर ईमान नहीं लाते थे।
आइए अब सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 108 और 109 की तिलावत सुने।
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
تو ईश्वर से डरो और मेरा आज्ञा पालन करो और मैं पैगंबरी के इस काम के बदले तुमसे कोई बदला नहीं चाहता कि मेरा बदला तो बस ब्रह्मांड के पालनहार के जिम्मे है।
इस आयत में एक बार फिर ईश्वरीय भय की बात दोहराई गई है, क्योंकि जो बात पाप की ओर मनुष्य के उन्मुख होने का कारण बनती है वो उस ईश्वर को भूलना है जिसने हमें अनुकंपाएं प्रदान करके हम पर उपकार किया है। मानो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी जाति के लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम लोग किस प्रकार ईश्वर की अवज्ञा करते हो, जबकि हर दिन सुबह शाम उसी का दिया खाते हो और उसी की इच्छा पर जीवित हो।
इसके बाद वे पापों से दूरी और सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, मैं ईश्वर की ओर से तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए आया हूं, तो अगर तुम मेरी बातें सुनोगे तो इसमें तुम्हारा ही हित है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों से मुझे कोई लाभ नहीं होगा और ना ही मैं नाम या धन कमाना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मैं तुमसे कोई मांग भी नहीं करता। यदि मैं अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वाह करूं, तो ईश्वर मुझे प्रतिफल देगा और आवश्यकता मुक्त कर देगा।
इन आयतों से हमने सीखा कि लोगों के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में ईश्वर से डरने और उसे याद रखने जैसी कुछ नसीहतें बार बार दोहराई जानी चाहिए, ताकि लोग निश्चेतना और पथभ्रष्टता में ग्रस्त न हों।
धर्म के प्रचारकों और लोगों को धर्म का निमंत्रण देने वालों को लोगों से भौतिक बातों की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उन्हें निष्ठा के साथ ईश्वर के लिए काम करना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इस स्थिति में लोगों पर उनकी बात का अधिक प्रभाव होगा।